हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5, कृष्ण कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक क्रमांक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस श्लोक से हमें सीखनी चाहिए कि कर्म बंधन कर्म की वजह से नहीं, अपितु कर्म करने की इच्छा या उद्देश्य मोटिवेशन के द्वारा होता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, इज नॉट द एक्शन विच बाइंड्स बट व्हाट द मोटिवेशन ऑफ एक्शन इज विच बाइंड्स अस टू द वर्ल्ड। तो जो भक्ति भाव से कर्म करता है, उसका अर्थ क्या है? भक्ति भाव का, भक्ति भाव का अर्थ का बहुत सिंपल अर्थ है, हमें कई बार हर बार ही इस बात को करते हैं, रिपीट करते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूं, ये श्रद्धा से स्वीकार करे और मैं ये कार्य कर रहा हूं क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। बस इस बात का ध्यान रखे। और दूसरा बात यहां पे बोल रहे हैं, मन और इंद्रियों को वश में रखता है। देखिए, प्रायः भौतिक मन और इंद्रियों का स्वभाव क्या होता है? वो भोग करना चाहते हैं। जो व्यक्ति हमारे सामने होता है, ये वस्तु होती है, उसका हम उपयोग अपने भोग के लिए करना चाहते हैं। और ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत गहरी बात है कि अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने संबंधों को इन जगत की वस्तुओं से या व्यक्तियों से रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई झगड़ा उस संबंध में होगा ही। कोई व्यक्ति अगर अपने इंद्रिय तृप्ति चाहता है तो किसी न किसी व्यक्ति को दुख अवश्य देगा। जैसे कि एक मच्छर मेरा खून पीने के लिए आता है, ये सोचते हुए कि ये तो मेरा अधिकार है, ये खून मेरे भोग्य वस्तु है, और ये नहीं सोचता कि मुझे कितना कष्ट होगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति मांस खा रहा है या कुछ भी कर रहा है, गलत कार्य करता है, तो ये नहीं सोचता कि उससे उस जीवात्मा को कितना कष्ट होगा। तो वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान इस स्पेशल गुण को क्यों बोल रहे हैं, सर्वभूतात्म भूतात्मा। शुद्ध भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति के अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। लेकिन शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर इस बात बताते हैं कि सबसे मुख्य गुण है या एक विशिष्ट गुण है कि सभी जीवात्माओं को प्रिय होना और सभी जीवात्माएं उसको प्रिय हों। हम सब लोग एक दूसरे को दोस्त दुश्मन के रूप में मानते हैं। उसको दोस्त मानते हैं जो हमें इंद्रिय तृप्ति में सहायक हो, और उसको दुश्मन मानते हैं जो हमारे इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध हो। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चेतना के विकास के द्वारा समझ पाता है कि मैं भगवान का अंश हूं, दास हूं, और सभी जीवात्माएं भगवान के अंश और दास हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति दोस्त या दुश्मन नहीं है, और इस कारण से वो सभी से प्रेम करता है, जैसे हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं क्योंकि उनका संबंध हम अपने पिता से देखते हैं। तो ये सेंट्रल संबंध देखने के कारण हम अपने भाई बहनों को प्रेम करते हैं, एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम अपना प्रेम भगवान से अनुभव करते हैं तो हमको ये भी समझ में आता है कि अन्य जीवात्माएं बल्कि सभी जीवात्माएं भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो फिर भगवान से संबंध देखने के कारण हमको वो प्रिय लगने लगती हैं। और ये बातें खाली हवाई बातें नहीं हैं, ये भक्ति के प्रभाव से अपने आप व्यक्ति को अनुभव होने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने कितना दुख दिया, उसके बावजूद भी जब भगवान ने उनको बोला कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे पिता का उद्धार कर दें, उन्हें नरक नहीं जाना पड़े क्योंकि आपके भक्त के प्रति उन्होंने बहुत अपराध किया था। तो ये बहुत ही, अगर आप बुद्धि से सोचें तो ये बहुत ही अचिंत्य बात है कि कैसे प्रहलाद महाराज को उन्होंने सर्प के बीच में डाला, उनको कढ़ाई में डाला, जलती हुई कढ़ाई में। अगर हमें ऐसा कोई व्यक्ति करने के बारे में सोचेगा भी तो हम उसका उसको बिल्कुल दुश्मन मानेंगे, लेकिन प्रहलाद महाराज इस प्रकार से नहीं सोच रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सही में शुद्ध भक्ति की अवस्था में व्यक्ति पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से ऊपर उठ जाता है और इसी कारण से सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता, जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में करुण करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। तो यही बात हम आपको समझा रहे थे कि इस जगत में हम अपने आप को स्वामी मानते हैं और लोगों को भोग दृष्टि से देखते हैं। ये पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये समाज मेरा है, और इन सबको मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लाइनअप होना चाहिए। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोग करता हूँ, और मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं लोगों को भोग करूँगा, मैं बताऊँगा कि उन्हें अपने जीवन कैसे चलाना चाहिए। तो इस प्रकार की भावना ये आसुरिक भावना है। ऐसे लोग किसी को प्रिय नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जब हमारी भावना रहे सेवक की, तो हम रियली लोगों को प्रिय हो सकेंगे सही मायने में। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि क्या ये सब आपके शिष्य हैं, तो उन्हें बोला नहीं, मैं इनका सेवक हूँ, मैं इनको भगवान तक लाने की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम सभी भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम सेवक की भावना को बढ़ाएं और स्वामित्व की भावना को त्यागने का प्रयास करें। एक और बात है इस संबंध में, एक वैष्णव जो है वो तीन लेवल के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, सोचते हैं मैं हूँ भगवान हूँ और कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उनकी चेतना में प्रगति होती है तो वो खुद को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, अन्य भक्तों को भी देखते हैं कि वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उन लोगों को देखते हैं जो भक्ति कर नहीं रहे हैं लेकिन मासूम हैं और भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, और अंत तो और वो भी देखते हैं कि कुछ लोग द्वेषी हैं जो भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो द्वेषी हैं उनसे वो द्वेष नहीं करता है, वो ही समझता है कि अज्ञान के कारण वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी उपेक्षा कर देता, उनको प्रचार नहीं करता। जो लोग मासूम हैं उनको प्रचार करने का प्रयास करता है। मासूम से मतलब बुद्धू नहीं, मासूम का अर्थ है जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना चाहते हैं। और जो भक्त है उनसे मैत्री करता है और भगवान से अपने प्रेम को जागृत करने का प्रयास करता है भक्ति के माध्यम से, साधना भक्ति के माध्यम से। तो इससे श्रेष्ठ भक्त वो है, उत्तम भक्त, जो सभी को देखता है कि सभी लोग भगवान के भक्त हैं, मैं भक्त नहीं हूँ, ये अद्भुत चेतना है। लेकिन बहुत बार क्योंकि प्रचार का कार्य इतना आनंदमय है, जो उत्तम भक्त है वो मध्यम लेवल पे आ जाते हैं, अपनी चेतना को नीचे तो नहीं लाते, मतलब उस प्रकार से देखते हैं का देखने लग जाते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो भक्ति स्वीकार करना चाहते हैं तो उनको नहीं देना, उनको देना चाहिए, और जो नहीं करना चाहते उनको नहीं देते। तो हम लोगों को कम से कम मध्यम तक आने का प्रयास करना चाहिए, तब हम भगवान की सत्यता को समझ पाएंगे। प्रभुपाद इसको चैतन्य चरितार्थ में तो समझाते हैं, जब हम मध्यम लेवल पे आएंगे भगवान की कृपा से, साधना के द्वारा, तो हम धीरे धीरे समझ भगवान के तत्व को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो अपने चित्त में देखना चाहिए कि क्या हम भक्तों से दोस्ती कर रहे हैं, या दोस्ती की भावना को बढ़ा रहे हैं, या फिर हम उनसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। प्रभुपाद मजाक में बोलते थे, न्यू फाइट मीन्स ऑलवेज फाइट, नौसिखिया भक्ता, मतलब हर छोटी छोटी बात पे वो भक्तों से लड़ाई करता रहेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम नौसिखिया लेवल से कम मध्यम लेवल पे आए और अन्य भक्तों की सेवाओं को भी हम अप्रिशिएट करने का प्रयास करें। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चेतना शुद्ध जब होती है तो मन स्वतः भगवान के ही बारे में सोचता है, मैं भागवत पढ़ूंगा, मैं भगवान के लिए भोग बनाऊंगा, भगवान का प्रचार करूंगा, भगवान का जप करूंगा। तो इस प्रकार से क्रियाएं अपने आप शुद्ध होने लगती हैं अगर मन शुद्ध रहता है तो। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, न ही उसे कृष्ण से संबंधित कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता, वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त कुछ अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। ये बहुत सुंदर सिम्टम प्रभुपाद जी बता रहे हैं। देखिए जब आप भक्ति करते हैं प्रमाणिक परंपरा में, तो ये सारे सिम्टम हैं, ये सारे लक्षण हैं आपके भौतिक भव बंधन का या भौतिक रोगों का ठीक होने के। अगर आपको भौतिक वार्ता में रुचि नहीं हो रही है तो आप प्रगति कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है आपके साथ में। बहुत से लोग कहते हैं हमारा मन नहीं करता भौतिक चर्चाओं में लगने का, तो ये कुछ सही गलत तो नहीं हो रहा है, ये सही है। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि व्हेन प्रजल्पा नॉट ओनली फील्स बोरिंग बट पेनफुली बोरिंग देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। यानी कि जो दुनिया की वार्ता है ना सिर्फ आपको नीरस लगे बल्कि दुख दुख देने वाली नीरस लगने लग जाए, तो समझ में आना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। जितना भगवान के बारे में सुनने का उत्साह, बोलने का उत्साह बढ़ रहा है, उतना ही समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारे हृदय में आ रहा है कि मैं भगवान प्रसाद का प्रसाद पाकर संतुष्ट हूँ, तो फिर हमें समझ में आना चाहिए कि वैराग्य उत्पन्न हो रहा है भक्ति के द्वारा, और ये भक्ति की प्रारंभिक कह सकते हैं लक्षण है अगर हम ठीक से भक्ति कर रहे हैं। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हों वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अपराध करने का मूलभूत सिद्धांत क्या है, हम अपने को इस जगत का केंद्र माने और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उद्यत रहे। तो अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम उत्साहित रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी को दुख देंगे, और ये ऐसा वक्त करते नहीं है। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ने में छोटा सा पास टाइम सुनाऊंगा, हरिदास ठाकुर जी महान भक्त हैं और वो एक गुफा में रहते थे और रहकर वो वहाँ पे भजन करते थे, तो वहाँ पे लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, और एक सर्प वहाँ पे रहता था। तो उस सर्प को देखकर लोग, जो आने वाले लोग थे, डर गए और वो सोच रहे थे कि सर्प को मारेंगे या कैसे निकालेंगे। तो हरिदास ठाकुर जी को जब मालूम चला, ध्यान दीजिएगा हरिदास ठाकुर जी से पहले उनको मतलब ही नहीं था कि सर्प है या नहीं गुफा में, क्या हम इस प्रकार से एक सर्प के साथ रूम में रह सकते हैं। कितना आश्चर्यजनक बात है ना, जरा सोचिए अपने आप, अभी जब आप यहाँ बैठे हैं इस कथा को सुन रहे हैं अगर, तो उस रूम में कोई सर्प हो, काला वृषधर सर्प हो, तो क्या आप उस रूम में बैठ पाएंगे। कितना अद्भुत है। और क्या सर्प भी शांति से बैठेगा, क्या वो डसेगा नहीं आपको। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शुद्ध भक्त अगर इतने उच्च स्तर का भक्त हो तो भगवान भी परमात्मा के रूप में अन्य जीवों को बोलते हैं कि कृपया इसको डिस्टर्ब मत करो, इसको परेशान मत करो। तो सर्प वहां पे रह रहा था और हरिदास ठाकुर जी भी रह रहे थे, और हरिदास ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है अगर ये कल शाम तक ये सर्प नहीं जाता है तो मैं ही उस गुफा को छोड़ दूंगा। तो बताइए कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि इंद्र तृप्ति की आसक्ति बिल्कुल भी हरिदास ठाकुर जी के हृदय में नहीं थी। तो देखते हैं अगले दिन सुबह लोगों ने देखा कि सर्प अपने आप ही वहां से चला गया। तो कितना अद्भुत है प्रभाव शिला हरिदास ठाकुर जी का, और इससे हम समझ सकते हैं कि उनकी इंद्रियां पूरी तरह वश में रहती हैं। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था, क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था। वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया, वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। तो अभी देख सकते हैं कि कितना घोर कर्म हुआ, अपने गुरुजनों का उनको वध करना पड़ा या उनसे युद्ध करना पड़ा, और ये बहुत बड़ा धर्म है बाह्य दृष्टि से। लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि वो उनको अपना शत्रु नहीं मान रहे थे। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, अर्जुन उनको अपना शत्रु नहीं मान रहे थे, अर्जुन केवल भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे थे, ये समझते हुए गीता को सुन करके कि मैं कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं कृष्ण की इच्छा जो है धर्म का संस्थापना उसमें केवल एक निमित्त मात्र हूँ और इंस्ट्रूमेंट मात्र हूँ, तो मैं ये लोग मेरे को शत्रु नहीं है, ये सब भगवान के अंश हैं, लेकिन अब क्योंकि अधर्म के पक्ष में है और भगवान अधर्म का नाश चाहते हैं तो इसलिए मैं उसका निमित्त बन रहा हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन उनको उनको शत्रु के रूप में नहीं देख रहे थे, इस कारण से कोई उनको कर्म बंधन नहीं लग रहा था। तो इसलिए हम फिर इस बात को रिपीट करके आप विराम देंगे कि हमको इस जगत में कर्म नहीं बांधता है, बल्कि कर्म करने का उद्देश्य बांधता है। तो व्यक्ति को सीखना चाहिए भगवद गीता के माध्यम से कि कैसे अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से करें, ताकि न सिर्फ वो कर्म बंधन से मुक्त हो अपितु भक्ति में भी आगे बढ़े। ठीक है, कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा।